Santi. इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के असंभव बातों को संभव कर दिया। आज हम देखते हैं जो ऋषि मुनि असंभव बात समझते हैं कि आग और कपूस इकट्ठे रह करके कभी भी पवित्रता का कंगन नहीं बांध सकते, परंतु आज हमारे हजारों भाई बहनों ने प्रवृत्ति में रहते हुए बेहद बाबा के साथ के द्वारा हिम्मत रख करके असंभव को संभव करके बताया। बलिहारी बाबा की है जो बच्चों को पवित्र रहने की युक्तियां भी बताता है और शक्ति भी देता है, परंतु पवित्र रहने वाले उन भाई बहनों की भी बहुत बड़ी हिम्मत है जिन्होंने महामंडलेश्वरों को, सन्यासियों को भी चैलेंज किया कि जिस बात को आप असंभव समझते हैं वो बात संभव ही नहीं परंतु अति सहज। हिम्मत बच्चों की और मदद बाप की, ये हम प्रैक्टिकल में रोज देखते रहते हैं कि बाबा ने कैसे बच्चों की हिम्मत के ऊपर, चाहे कोई बैचलर है चाहे कोई प्रवृत्ति वाले हैं, सबके जीवन को भोगी से योगी बना दिया। उसका आधार तो हिम्मत ही है। वास्तव में देखा जावे तो हिम्मत का अर्थ है दृढ़ संकल्प। अगर दृढ़ संकल्प है तो कोई भी असंभव कार्य जो है वो संभव हो जाता है। बाबा ने आकर के हम बच्चों के अंदर वो दृढ़ता, संकल्पों में और वो परिपक्वता भरी जिसके आधार पर हम अपने जीवन को योगी बना सके, प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहने का पान का बीड़ा उठाया। संकल्प ये ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के आधार पर आज हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। वैसे भी शास्त्रों में संकल्पों की बड़ी महानता गाई गई है कि ब्रह्मा को संकल्प आया और उसने नई सृष्टि रच दिया। तो एक ब्रह्मा बाप के संकल्प में इतनी शक्ति है जो वो सृष्टि रच सकता है, तो क्या हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संकल्प में वो शक्ति नहीं है जो हम भोगी जीवन को योगी बना सकते हैं? संकल्प ये ऐसी तीली है, अगर जैसा एक माचिस की तीली लगाएंगे तो सारा जंगल जल जाता है, खाक हो जाता है, वैसा ही एक दृढ़ संकल्प की तीली जिस समय पर हम लगाते हैं, अर्थात ही जब एक संकल्प करते हैं ईश्वरीय याद का, तो हमारे 63 जन्मों के पाप कर्म जो है वो दग्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते। दृढ़ संकल्प जो है वो ऐसा टिकट है जिस समय पर हम एक संकल्प करते कि हमें सूक्ष्म वतनवासी बनना है, हमें परम धाम में जाना है, हमें नई दुनिया की सैर करनी है, उसके लिए हमें सिर्फ एक ही सेकंड लगता है। तो ये जो संकल्प है, संकल्पों के अंदर दृढ़ता आना अर्थात ही हिम्मत, जिसको कोई विल पावर कहते, आत्मबल कहते, जिस आत्मबल के द्वारा हम आत्माएं तो परिवर्तन होती है, परंतु उसके साथ साथ सारी सृष्टि को भी परिवर्तित करते। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को संकल्पों की महानता बताई। हम बच्चों के अंदर स्वचिंतन के द्वारा वो हिम्मत भरी, जिस हिम्मत के आधार पर आज हम सारे विश्व का कल्याण करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया। क्योंकि हम देखते हैं, हम पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, माया के साथ लड़ाई भी कर रहे हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई भी चढ़ते हैं, बड़ा ऊंचा हमारा लक्ष्य है, जिसका ही गायन किया जाता है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो चढ़ाई चढ़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जब पढ़ाई पढ़ते हैं, परीक्षा का समय आता है, वो भी हिम्मत के बिगैर काम नहीं चलता है। हम देखते हैं बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, सारा बरस मेहनत करते हैं, परंतु जब उनके पास प्रश्न पत्र आता है तो हाथ उनके कांपने लगते। तो हिम्मत न होने के कारण सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो भूल जाते हैं और पास होने के बदले फेल हो जाते हैं। वो तो बरस में हम देखते हैं एक बार ही उनका फाइनल एग्जाम होता है, परंतु हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम तो सदैव 12 मास और 24 घंटा परीक्षा पेपर के हाल में ही बैठे हुए हैं। क्योंकि माया जो है वो अनेक अनेक रूप धारण करके हमारे पेपर लेती रहती है। बाबा ने बड़ी वंडरफुल ये यूनिवर्सिटी स्थापन की हुई है। हमारा सुप्रीम टीचर शिव बाबा है, बाबा हमें पढ़ाता है, माया हमारी परीक्षा लेती है सदैव, और हमारे पेपर हम खुद ही चेक करके उसको मार्क्स देते हैं। माया हमारे पेपर चेक नहीं करती है, परीक्षा लेने का काम जरूर करती है, पर हम खुद ही देखते हैं कि हम कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। तो पेपर देने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जब माया के साथ हम युद्ध करते हैं तो युद्ध के मैदान में भी हिम्मत ही काम आती है। क्योंकि आज योद्धा जब युद्ध के मैदान में खड़ा रहता है, उसके पास कितने भी रिफाइन अस्त्र शस्त्र हो, परंतु अगर वो हिम्मत हार जाता है, घबरा जाता है, वो शस्त्र निकम्मे हो जाते हैं। अगर उसमें हिम्मत है, उसके पास इतने औजार नहीं हैं, तो भी वो सामने दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो माया के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए भी हिम्मत, आत्मबल की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कोई कोई हमारे भाई बहन सारा दिन घबराते रहते हैं, अरे माया आ गई, माया आ गई, माया आ गई, वो भी सुनती रहती है, और वो तो इंतजार ही करती है कि मेरे को ये ब्राह्मण बुलावे और मैं जाके इनको गले लगाऊं। क्योंकि वो हमारी आधा कल्प की मित्र भी तो है। बाबा कहते कि बच्चे, तुम खुद ही दरवाजा खोल करके बैठते हो, और उसका आह्वान करते हो माया का, तो माया क्यों नहीं आएगी? और माया आने के बाद तुम उसकी खातिरी भी करते हो, हाँ उसको बिठाते भी हो, तो वो भी चिपक के बैठ जाती। तो माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जब हमारे अंदर हिम्मत है तो माया दूर से ही भाग के चली जाती है, क्योंकि वास्तव में देखा जावे तो माया आती है हमारे से विदाई लेने के लिए। परंतु अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती है तो उससे घबरा जाते हैं, तो वो क्या करती है, उसका गैर फायदा ले लेती। तो इसीलिए जीवन में हर रीति से हिम्मत का जो गुण है वो बहुत ही आवश्यक है। अभी ये जो हिम्मत है, इस हिम्मत के लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत कुछ युक्तियां बताई हुई, क्योंकि वास्तव में देखा जावे तो स्मृति के द्वारा ही समृद्धि आती है। बाबा हम बच्चों को रोज रोज नए नए स्वमान देते हैं, नए नए वरदान देते हैं। जितना जितना हम स्वमान में रहते हैं उतना उतना हमारे अंदर आत्म बल बढ़ता जाता है। उसको आप हिम्मत कहो, आत्म बल कहो, विल पावर कहो। बाबा घड़ी घड़ी क्यों कहता है कि बच्चे स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ? क्योंकि जब हम स्वमान की सीट के ऊपर सेट होते हैं तो हमारे अंदर वो हिम्मत, वो ताकत आती है, जिस ताकत के आधार पर हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आज हमारा जीवन जो पवित्र और योगी बना है, ये भी स्मृति के आधार पर बना है, क्योंकि ये सारा खेल जो सृष्टि का है ये स्मृति और विस्मृति का ही है। बाबा ने आकर के हमको पहली पहली जो स्मृति दिलाई आत्माभिमानी बनने की, जिस स्मृति के द्वारा ही हमारा जीवन परिवर्तन में आ गया। अभी बाबा ने जब हम बच्चों को ये स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जो है तुम ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता धर्म की आत्माएं हो, तुम्हारे आदि और अनादि संस्कार जो है वो क्या है, जब आदि और अनादि संस्कारों की हमें स्मृति दिलाई तो हमारे अंदर वो समृद्धि, वो शक्ति आ गई, जिस शक्ति के आधार पर संपूर्ण निर्विकारी बनने का हमने दृढ़ संकल्प किया। और उस दृढ़ संकल्प के द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तन करना चालू कर दिया। बाबा सदैव हमको स्मृति स्वरूप बनाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जितनी जितनी हमारी स्मृति पावरफुल होती जाती है उतनी उतनी हम आत्माएं शक्तिशाली बनती जाती है, और जिस शक्ति के आधार पर ही हम मनोविकारों के ऊपर, अपने पुराने विचारों के ऊपर, अपने पुराने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करते। इसीलिए बाबा इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि अगर इनको एक ही स्थिति में स्थित रहना सिखावे तो कोई भी बात एक ही करते करते मनुष्य बोर हो जाता है। इसीलिए बाबा ने हमें अनेक अनेक 365 दिन के लिए 365 स्वमान दिए हुए, 365 स्मृतियां दी हुई है, जिन स्मृतियों में स्थित होकर के हम खुद को परिवर्तन करते हैं, जिनका स्मरण करके हम शक्तिशाली बनते हैं। अभी आप देखो बाबा ने हम बच्चों को विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया, टाइटल दिया। अभी हमें तो हमारे कल्याण का भी ठिकाना नहीं था, विश्व कल्याण क्या होता है हमें क्या पता था, कभी सोचा था क्या किसी ने कि हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं? परंतु जब बाबा ने आकर के हम बच्चों को ये स्मृति दिलाई कि तुम कल्प पहले वाले जो है विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, तुम बाबा के मददगार बच्चे हैं, तुमने ही 5000 बरस पहले बाबा के साथ मदद करके सारे विश्व को परिवर्तन किया था, तुम ही विश्व परिवर्तक हो। इस स्मृति के द्वारा हमारे अंदर वो समृद्धि आ गई जो हमें विश्व का फिक्र हो गया। आज हम देखते हैं बहुत हमारे भाई बहन जो है खुद का फिक्र कम करते हैं, विश्व का फिक्र ज्यादा करते। कल्याण का विश्व का कल्याण कैसे हो, अन्य आत्माओं की सेवा कैसे हो, इसके पीछे लगे रहते हैं। तो ये जो बाबा हम बच्चों को जो स्वमान देता है या जो स्मृतियां देता है, यही तो बाबा की मदद है। कितनी बड़ी मदद करता है, मदद माना क्या, हाथ पकड़ के हमारा चलाएगा क्या? परंतु बाबा के जो वरदान, बाबा की जो स्मृतियां हैं, बाबा जो हमें स्वमान देता है, ये कदम कदम पर हमारे को क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो हमारे अंदर वो विश्व का कल्याण करने की रहम की भावना उत्पन्न करते हैं कि तुम रहम दिल। तो अनेक जो बाबा ने वरदान दिए हुए हैं, वो वरदान जो है वही बाबा की बहुत बड़ी मदद है। जैसा कभी कभी बच्चे कहते हैं, बाबा हमारे ऊपर रहम करना, कोई कोई भक्ति मार्ग के संस्कार होते हैं, हमारे को मदद करना। बाबा कहता है, मैं तुमको रोज पढ़ाता हूँ, ये कमती मदद है क्या? मैं रोज परम धाम से आके तुम्हारे को सिखाता हूँ, ये कोई कमती मदद है क्या? ये कोई कमती रहम है क्या? और क्या चाहिए तुम? तो बाबा हम बच्चों को कदम कदम पर मदद करता है। ये यहाँ जो भी आत्माएं बैठी है उन सबको अच्छी तरह से अनुभव है कि जो भी हम कार्य करते हैं और हमें सफलता मिलती है तो उसके पीछे कौन? हमने कर रहे हैं, परंतु वो कराने वाला करा रहा है, वो हमको लेकर के जा रहा है। वो कैसा जाना है उसकी हमको युक्तियां बताता है। वो जो कुछ भी करता है, बाबा कभी भी ये नहीं कहता मैं करता हूं, बाबा कहता है बच्चे करते हैं, बच्चे सारे विश्व को परिवर्तन करते हैं। देखो बच्चों ने अपने जीवन को कितना परिवर्तन किया है, परंतु हम समझते हैं हमने जीवन को परिवर्तन किया है या बाबा ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया। तो बाबा ने हमारे को इतनी मदद किया है, बाबा हम बच्चों को इतनी शक्तियां देता है, जिन शक्तियों से क्या होता है, हमारा जीवन स्वतः ही परिवर्तित होता जाता है। तो अगर हमें ये स्मृति रहती है कि मेरा साथी कौन है, कहा जाता है ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगी आंधी और तूफान। तो हमारा साथी जो है वो सदैव साथ में है, वो हमें हर श्रेष्ठ कार्य में मदद करने के लिए तैयार। बाबा ने बड़ी अच्छी युक्ति बताई है, जिस भी समय तुम्हारे आगे कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी बात आती है, तुम सिर्फ दिल से बाबा कहो, तुम दिल से बाबा कहो, बाबा तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। अभी वास्तव में देखा जावे तो हम बाबा कहे और बाबा हाजिर हो जाएगा, ऐसा नहीं, बाबा सदैव हाजिर है ही है। हम खुद भी अनुभव करते हैं, भक्ति मार्ग में कहते थे वो हाजरा हजूर है, परंतु अभी हम अनुभव करते हैं कि बाबा सदैव हमारे नजर के सामने हैं। तो बाबा जब सदैव हमारे नजर के सामने रहने के लिए तैयार है और बाबा सदैव हम बच्चों को साथ देता है, तो जिसके नजर के सामने बाबा है उसकी नजर कभी भी किसी के ऊपर पड़ नहीं सकती और माया की नजर उस आत्मा को कभी लग नहीं सकती, क्योंकि वो बाबा की नजरों में है ना। सबसे सेफ साधन जो है, आज हम देखते हैं कहां भी सेफ्टी नहीं है, परंतु सेफ्टी है तो एक बाबा की गोदी में है, बाबा के नजरों में। तो बाबा कहता है, बच्चे देखो, तुम मेरे इतने शिकीलधे बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो, जो मैं तुमको नैनों पर बिठा करके लेके जाता हूँ, अपनी दिल की डब्बी में छुपा करके लेके जाता हूँ। परंतु उसके लिए क्या करना है, बाबा के नैनों में बैठने के लिए बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बताई हुई है कि तुम्हारे नैनों में सदैव बाबा बसता रहे। अगर तुमने बाबा को अपने नैनों में बिठाया है तो तुम भी बाबा के नैनों में बैठने के लायक है। तो बाबा हम बच्चों को इतने अच्छे अच्छे स्थान देता है, बाबा हम बच्चों को इतने सेफ्टी के साधन देता है, जो इस दुनिया में रहते हुए भी जो दुख की दुनिया है, अशांति की दुनिया है, उसमें से निकाल के बाबा ने हमें क्या किया, संगम युग के ऊपर स्थित कर दिया। अभी आप ही बताइए, बाबा ने हम बच्चों के लिए स्पेशल संगम युग बनाया। सारी दुनिया तो कलयुग में है, परंतु हम बच्चों के लिए युग ही स्पेशल बाबा ने बनाया, संगम युग। तो ये जो संगम युग की स्मृति है, संगम युग की स्मृति अर्थात मर्जी वे जन्म की जो स्मृति है, ये स्मृति कितनी समृद्धि दिलाती है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वरीय गोद के बच्चे हैं, हमारा ये मर्जी व जन्म है। अगर मर्जी व जन्म सदैव याद रहता है, सदैव हमें या स्मृति रहती है, तो उससे हमारे अंदर कितनी हिम्मत आती है। क्योंकि हम सब अनुभव करते हैं कि देवताओं का जन्म, जो सत्युग और त्रेता युग में योग बल की पैदाइश है, द्वापर और कलयुग में भोग बल की पैदाइश है, परंतु ये संगम युग ही ऐसा है जहां पर ब्रह्मा मुख की पैदाइश है, हम ब्राह्मण। तो हमारा जन्म ये सर्वोत्तम जन्म है, हमारा जन्म ये हीरे तुल्य जन्म है। इस स्मृति से बाबा ने हमारे अंदर कितनी हिम्मत भरी कि तुम्हारा जन्म इतना ऊंचा है, इसीलिए तुम्हारे कर्म भी क्या होने चाहिए, सदैव ऊंचे होने चाहिए। तो बाबा का जो एक एक महावाक्य है वो हमें हिम्मत देता है, बाबा का एक एक महावाक्य है वो हमारे को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, समृद्धि देता है, शक्ति देता है। अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि बाबा जो हमें टाइटल देता है या बाबा जो हमें स्मृतियां दिलाता है, उन स्मृतियों के स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। तो जितना जितना हम आत्मचिंतन करते हैं, उस आत्मचिंतन के आधार पर हमारे अंदर विल पावर बढ़ती जाती है, हमारी हिम्मत बढ़ती जाती है कि हम ही बाबा के कल्प पहले वाले विजयी रतन। हम एक कल्प में विजय नहीं बने हैं, परंतु कल्प कल्प विजयी बनते आए हैं और अभी हमारी ही विजय है। तो ये जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प ही क्या करता है, हमें विजयी बना देता। तो दृढ़ संकल्प हम तब कर सकते हैं जब हम निश्चय आत्मक बुद्धि है। हमेशा कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो हमें खुद के ऊपर भी पक्का निश्चय होना चाहिए, आत्म निश्चय और परमात्म निश्चय। तो जब तक मेरा मेरे ऊपर निश्चय नहीं है, तब तक हम माया के ऊपर जीत नहीं पा सकते। बहुत आत्माएं ऐसी होती है जिनको बाबा के ऊपर तो निश्चय है, बाबा को याद भी करते हैं, परंतु खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, खुद के ऊपर निश्चय नहीं, पता नहीं चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, देखते हैं क्या होगा। बाबा कहता है ये जो गे गे करने वाले हैं ना, ये पीछे ही रह जाते, बाबा को गे गे करने वाले नहीं अच्छे लगते हैं। चलेंगे नहीं, चलना ही है, मुझे बनना ही है। जैसा हम लोग देखते हैं, बाबा ने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे सृष्टि को परिवर्तन करना ही है। ये शिव बाबा का दृढ़ संकल्प तो रहा, पर ब्रह्मा का भी दृढ़ संकल्प रहा। इसलिए हमने देखा कि शुरू से लेकर के बाबा के आगे कितनी परीक्षाएं आई, परंतु बाबा अपने निश्चय से कभी डगमग नहीं। चाहे सारी सिंध हैदराबाद एक तरफ हो गई, चाहे सारी विश्व एक तरफ हो गई, परंतु बाबा ने कोई अपना प्लान बदली नहीं किया। बाबा कभी घबराया नहीं, उल्टा बीच बीच में जब भी सिंध में थोड़ी शांति हो जाती थी, ये एंटी पार्टी कुछ नहीं करती थी, बाबा कहते थे इनको क्या हो गया, कुछ करते नहीं आजकल, और ही वो विघन डालते थे, बाबा मनोरंजन करता था उसके। क्यों? उसको परमात्म निश्चय भी था, आत्मनिश्चय भी था, जिसके कारण भले सब कितने भी ये हो गए। एक बार ऐसा ही ब्रिजेंद्र दादी ने कहा, एक बार ये सिंध हैदराबाद में जब बहुत घमसान हो रहा था, तो पहले आप लोगों को मालूम होगा जो पंच होते थे गांव में रहने वाले शहर में, उनको बहुत मान दिया जाता था, कहा जाता था पंच में परमेश्वर है। तो ये पंच खास बाबा से मिलने के लिए आए, क्योंकि वैसे बाबा का पहले से बहुत नाम था सारे समाज में, क्योंकि बाबा तो भले लास्ट जन्म है श्री कृष्ण की आत्मा का, पर फर्स्ट जन्म के जो बाबा के संस्कार हैं, उदारता के, पवित्रता के, श्रेष्ठता के, श्रेष्ठ चरित्र के लिए बाबा का बड़ा गायन, तो इसीलिए सब बाबा को बहुत मानते थे, देव मानुष मानते थे उसको। तो बाबा के पास मिलने को आए तो बाबा ने उनकी बहुत खातिरी किया, तो कहा दादा ऐसा है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, क्योंकि गीता ज्ञान ही सुनाते, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, कितना अच्छा ज्ञान देते हैं आप, कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, सब कितने खुश होते हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा है, पर ये जो पवित्रता की बात है ना, इसको जरा माताओं कन्याओं को बोलो ये ऐसा नहीं करें, ये थोड़ा इस नियम को थोड़ा सा लूज कर डालो। बाबा ने कहा ये कोई मैं थोड़ा ही बोलता हूं, हाँ शिव भगवान कहता है काम महाशत्रु, और मैं क्या बोलूं, वो मित्र है, वो तो जो भगवान बोलता है वो ही करना है ना, कोई मनुष्यों का थोड़ा ही सुनना है। मतलब इतना बाबा पक्का था, भले सभी एक तरफ आकर के बैठ गए, बाबा ने कहा मैं ऐसा नहीं बोल सकता कभी, ऐसा थोड़े उनको खुश करने के लिए बोलते हुए बाबा ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो आज इतने विघ्न पड़े यज्ञ में, इतने सितम सहन करने पड़े, परंतु एक दृढ़ संकल्प जब किया कि हमें पवित्र जीवन बनाना है। हम देखते यहां भी माताएं कन्याएं भाई बहन इन्होंने क्या किया, ये हिम्मत रखी ना, दृढ़ संकल्प किया कि हमको पवित्र बनना ही है। तो जैसा हम ये हिम्मत रखते हैं कि हमको पवित्र बनना है, हमारे को खान पान की शुद्धि करनी है, जब ये हमको स्मृति आ गई, अरे मैं देवी देवता धर्म की आत्मा है, ये हम क्या खाते हैं, ये हमारा आसुरी भोजन हमारा भोजन नहीं है, तो सबके भोजन में भी परिवर्तन हो गए, सबके बोलने में परिवर्तन हो गया, सबके कर्म में परिवर्तन हो गया। तो उसी प्रकार बाबा अभी हमारे से ये चाहता है कि हमें हिम्मत रख के हमें अव्यक्त फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना, क्योंकि बाबा ने भी तो हिम्मत रख करके सर्व कारोबार संभालते हुए भी क्या किया, उस स्थिति को प्राप्त किया ना। तो हम सभी को ये पता है कि हमें ब्राह्मण से देवता बनने के पहले फरिश्ता जरूर बनना है, संपूर्ण स्टेज को जरूर प्राप्त करना। तो अगर हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि मुझे संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है, तो उस संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने अंदर वो क्वालिफिकेशन धारण करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बाबा ये बताते हैं कि बच्चे वो जो फरिश्ते वाली दुनिया है उधर आवाज नहीं, तुम बच्चों को आवाज से परे जाना। तो जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, जितना जितना हमें अपना वो स्वरूप याद रहता है, फरिश्तेपन का स्वरूप याद रहता है, तो दुनिया की बातों में, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की बातों में, पराई बातों में, पुरानी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। तो हमें हरेक को ये चेक करने की जरूरत है कि इन बातों से हम दूर हैं। बाबा के बच्चे तो बन गए, अपने जीवन को हमने पवित्र तो बनाया, पर पवित्र का मतलब क्या है? हमारे विचार भी सदैव पवित्र चलते रहे, हमारी स्थिति ऐसी ऊंची बन जावे बाप समान, तो उसके लिए हमने ऐसा दृढ़ संकल्प किया है कि हमें अपने जीवन को एकदम फरिश्ता बनके, फरिश्ते का मतलब जिसका देह सहित देह के साथ किसी का भी रिश्ता नहीं, रिश्तों में रहते हुए भी रिश्तों से न्यारा है, बाबा की यही तो खूबी है, घर बार नहीं छुड़ाता है, साथ में रखता है, परंतु साथ में रखते हुए न्यारा बनना सिखाता। तो जितना जितना हम देह और देह की दुनिया से न्यारे बनते जाते हैं, उतना उतना क्या है, हमारे अंदर ईश्वरीय प्यार बढ़ता जाता है, बाबा की खींच बढ़ती जाती है। तो हमें ये देखना है कि हम, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के कितने नजदीक पहुंचे। बहुत बारी बाबा बताते थे कि बच्चे देखो, तुम एकदम इतने नजदीक पहुंचे हो, सड़पंद माना बुलावे, एक सामने वाला बुलावे और तुम सुनो, तुम्हारे लिए स्वर्ग इतना नजदीक होना चाहिए जैसा आंखों के सामने तुमको दिखाई पड़ रहा है। तो हम देखते थे साकार बाबा को, जैसा कि वो दृश्य ऐसा दिखाई पड़ता था, अभी अभी शरीर छोड़ूंगा जाकर के ऐसा मिचनू बनूंगा, श्री कृष्ण बनूं, बाबा इस रीति से बोलते थे, हम लोगों के आगे भी वो स्वर्ग जैसा कि एकदम इमर्ज हो जाता। तो जिसको सामने सदैव स्वर्ग दिखाई पड़ेगा उसको नरक तो जरूर भूला हुआ होगा ना, याद कहां से आएगा। तो बाबा की ये युक्तियां हैं, बाबा की ये हमको मदद है, जो आने वाली दुनिया को हमारे सामने क्या करता है, एकदम इमर्ज कर देता है। और बाकी तो बाबा हरेक बच्चे को सदैव मदद करता रहता है। एक एक आप विचार करो थोड़ा, जब योग में बैठो तभी आप इस बात के ऊपर इसी स्थिति में बैठो कि हम जब से बाबा के बने तब से लेके बाबा ने मेरे को कौन कौन सी मदद किया। आपको सब एक एक दृश्य आंखों के सामने आएंगे कि कैसे कठिन समय पर उसने हमारा साथ निभाया, क्योंकि बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है। तो बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध होने के कारण बाबा सर्व संबंधों की हमें रचना देता है, वो हमारा खुदा दोस्त है। देखो लौकिक जीवन में जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, जब अच्छे दिन होंगे तभी आपके साथ निभाएंगे दुनिया वाले, परंतु जब भी कठिन समय होगा तो किनारा कर लेगा। पर ये खुदा दोस्त ऐसा है जो कठिन समय होगा तो खास हमारे को मदद करता है। ये अनुभव है क्या नहीं आपको? जिनको अनुभव है हाथ ऊपर करो, देखो सबको अनुभव। अगर अनुभव नहीं है तो मतलब अभी तक साथ का अनुभव ही नहीं किया है आपने, बाबा क्या है यही नहीं जाना। बाबा हमेशा मदद करता है, आपको हर बात में मदद करेगा, आपको लिखना भी सिखाएगा, पढ़ना भी सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा। हमारे पास एक माता थी, अभी शरीर छोड़ा थोड़ा समय हुआ, बहुत पुरानी थी साकर बाबा के समय, तो उसकी बड़ी लगन थी, उसको पढ़ना नहीं आता था, स्कूल में गई नहीं थी, स्कूल में नहीं गई थी, तो उसको ये था बस मैं मुरली पढ़ूं। अभी पढ़ना उसने क कभी नहीं सीखा था, ABCD, अभी कहां से मुरली पड़ेगी बताओ। तो अमृत वेले उठ करके बैठती थी, बाबा मेरे को पढ़ना सिखाओ, मेरे को आता नहीं है, मेरे को मुरली पढ़नी। तो एक दिन ऐसे ही अमृत वेले उठी बैठी और बाबा से बातें कर रही थी, बाबा ने उसको बोला कल तुम पार्टी पेंसिल लेके बैठना। दूसरे दिन सवेरे पहले पार्टी उठाते थे ना, क्या बोलते आप उसको, तो स्लेट, तो वो लेके बैठी। फिर बाबा ने उसको सारा क ख ग सारा सिखाया, उसको बोलता था, इसको क बोलते हैं लिखो, वो लिखती थी एक एक ये ग, फिर उसके ऊपर ये होता है ना कि मात्रे होते, मात्रे भी सिखाए, सब सिखाया उसको, और उसको मुरली पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ती नहीं थी मुरली, फिर वो टीचर बन के गीता पाठशाला हमारी संभालती थी, वो मुरली सुनाती थी औरों को। देखो ये क्या है, बाबा की मदद कितनी है बोलो। बाबा हर बात में मदद करने, आपकी जो इच्छा होगी ना, श्रेष्ठ इच्छा, वो पूरी करेगा। टीचर बन करके बैठा, उसको सारा सिखाया। वो बड़े फकुर से बोलती थी, बाबा मेरा तो डबल टीचर है, औरों को तो सिर्फ ज्ञान सुनाता है पर मेरे को तो पढ़ना भी सिखाया। और क्लास हमारा इतना अच्छा क्लास, अभी भी वहां तो सेंटर है, उस समय गीता पाठशाला चलती थी उसके पास, तो बैठ करके सबको सुनाती। बाबा हर बात में मदद करता है, परंतु उसके लिए देखो उसने हिम्मत किया ना कि मेरे को करना ये है। हिम्मत, हिम्मत क्या चीज है, उसने दृढ़ संकल्प किया कि मेरे को मुरली पढ़नी है, तो बाबा ने उसको मदद किया। और दूसरे जो बहुत होते हैं वो क्या बोलते हैं, बहन जी हम तो आंध्र में हमेशा जाती है ना बहन जी, हमको हिंदी नहीं आता। हम बोलते क्यों नहीं आता तुमको हिंदी, क्या बात है भाई, क्यों नहीं आता है हिंदी? नहीं हमको नहीं आता है, हमारे पास तो तेलुगु चलता है ना। हम बोलते तुम्हारी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा जो होती है वो तो बच्चे को जरूर आती है ना, तो हमारी माँ कौन है बताओ? ब्रह्मा हमारी माँ है ना, ब्रह्मा शिव हमारा बाप है, ब्रह्मा हमारी माँ है, तो हमारी भाषा कौन सी है फिर? हिंदी है ना हमारी भाषा, हमारी माँ की भाषा हिंदी है, तो हमारी भाषा हिंदी है, फिर क्यों नहीं आनी चाहिए? तो हमारी कितनी माताओं ने ट्यूशन रख करके हिंदी सीखा है कि हमारी मातृभाषा है तो हमको जरूर सीखना है। तो ये बाबा हम बच्चों को सदैव हर प्रकार से मदद करने को तैयार है, परंतु हम मदद लेने वाले भी तो चाहिए ना, बाबा तो देता है। आज देखो हम देखते हैं कितने भाई बहन सरेंडर है हमारे पास, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कितने यज्ञ में कितने भाई बहन सरेंडर है, बिगर हिम्मत सरेंडर हुई है? उसके लिए कम हिम्मत चाहिए? हिम्मत के बिगर तो काम नहीं चले। हम खुद देखते हैं जिस समय पर हम आए, हमारे साथ और भी कन्याएं आई, अभी तक वो सोच रही है मरे या नहीं मरे, मरे या नहीं मरे। हम लोगों ने छलांग लगा दिया तो लगा दिया। वैसा भी देखो जब भी ये करते तरना सीखते हैं ना, तो जो हिम्मत रख के छलांग लगाता है वो पार चला जाता है, और जो सोचता रहता है ना तो वहीं रहता है। तो अभी तक वहीं सोच रही है कि अभी बाबा का बने क्या करे, सेवा में लगे नहीं लगे, घर में ही रह के करे क्या करे, अभी भी उधर ही है। आज भी उनको बोले हैं नहीं हमारी बहुत इच्छा है हम सेवा में लग जावे, अभी तो हम आके बूढ़े हो गए, आयु तो बड़ी हो गई ना, हम तो अभी आके बूढ़े हो गए भाई, अभी क्यों नहीं छोड़ते? तो अरे पहले ही नहीं छूटा तुम्हारे से, अभी कहां से छूटेंगे? तो ये इसीलिए हर बात में हिम्मत की बहुत आवश्यकता होती है। तभी बाबा कहता है हिम्मतवान बच्चे तो मदद दे खुदा, मैं बैठा हूं मदद करने के लिए, परंतु हिम्मत तो तुम्हारे को रखनी पड़ेगी, अगर तुम हिम्मत ही नहीं रखेंगे तो कहां से आएगी, समझा? जब हम नए नए आए बाबा के पास, शुरू में मैं जब आई बाबा से मिलने के लिए आई यहां साकार बाबा से, तो बाबा हमारे को जब भी देखता था, मैं तो छोटी थी बहुत, बाबा देखता था, बाबा कहता था बच्ची तुम बहुत बड़ी हो गई, अभी थी मैं 17-18 बरस की, तुम बहुत बड़ी हो गई, तुमको सेवा में लगना चाहिए। मैं बोलती थी अभी मैं बड़ी हो गई, मेरे को देखो बाबा स्मृति कैसा दिला, मेरे को सेवा करने हिम्मत देता था, तुमको सेवा में लगना चाहिए। हमने कहा अच्छी बात है सेवा में लगेंगे, तो हिम्मत आ गई सेवा में लगने की हिम्मत। फिर हमने बाबा को बोला बाबा अभी मैं नहीं जाएगी, आपके पास ही रहेगी यहां। बाबा ने कहा बच्चे ऐसा नहीं रह सकते हैं, बाप की चिट्ठी चाहिए लौकिक बाप की। अभी हमारे लौकिक बाप को तो मालूम भी नहीं था मैं इधर आई थी, तो चिट्ठी कहां से देगा वो बोलो। तो हम बोले लौकिक भाई को मालूम था, लौकिक माँ को मालूम था, बाप तो मानता नहीं था इन बातों को, तो चिट्ठी लेने देने की तो बात ही नहीं थी, वो सुनेगा तो गर्म हो जाएगा कि ऐसा कैसे चली गई। फिर हमने बोला अभी क्या करने का, मैं बोला बाबा भाई की चलेगी क्या, बोला नहीं चलेगी। माँ की चलेगी, बोला नहीं चलेगी। जब तक बाप जिंदा है तब तक किसी की चिट्ठी नहीं, बाप की चिट्ठी चाहिए कि मैं छुट्टी देता हूँ इसको। हम बोला अभी बाप जिंदा है, अभी कभी जाएगा क्या मालूम अपने को जो दूसरे की चिट्ठी चल सके तो फिर और उसको चिट्ठी लिखने, अभी कैसा चिट्ठी कैसा मंगावे, उससे क्या करे, पहले तो उसको ये मालूम पड़ना चाहिए कि मैं मधुबन में आई हूं। फिर मैंने हिम्मत किया, हिम्मत की बात सुना, फिर मैंने हिम्मत किया, फिर मैंने उसको चिट्ठी लिखी रात को बैठ करके, कि क्योंकि बाबा ने मेरे को नशा चढ़ाया था ना, तुम बड़ी हो गई। तो मैंने उसको लौकिक बाप को चिट्ठी लिखी, मैं बोला अभी मैं बड़ी हो गई हूं और मेरे को मेरा समझता है क्या करने का है, तो आप हमारे को छुट्टी दे गए सेवा के लिए, हमारी बहुत इच्छा है हम ईश्वरीय सेवा करें। तो हिम्मत रख के मैंने चिट्ठी लिखी उसको, अभी चिट्ठी तो गई मेरी वहां जाने के बाद, पर उसको पढ़ के कौन सुनावे, उसको हिंदी नहीं आता, उसको उर्दू आता था, पंजाब में तो उर्दू पढ़ते थे ना, तो हिंदी विंदी कौन सीखता था, तो उसको आता नहीं था, उसको अभी पढ़ के कौन सुनावे। तो वो किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसको मालूम नहीं था मैं इधर आई, पहले तो ये मालूम पड़ेगा तभी बिगड़ेगा वो क्यों गई। तो फिर आखिर हमारा लौकिक भाई जो ज्ञान में चलता था, उसने हिम्मत करके उसको पढ़ के सुनाया, तो उसकी संतोष की चिट्ठी आई है, तो बोला अच्छा पढ़ के सुना क्या बोलती है। तो इसने पढ़ के सुनाया, क्योंकि कभी जीवन में उसको चिट्ठी लिखी नहीं थी, पहली बार ही लिखी थी, पहली और लास्ट। तो फिर उसने पढ़ के सुनाया उसको, तो उसने बोला अच्छा इसको सेवा करने की है, तुम लिख डालो उसको, मैं सही कर दूंगा, बोला परमिशन लिख दो। बोला देखो बाबा ने मेरे को कैसी मदद किया, मैंने हिम्मत रखी है तो बाबा ने उसको टच किया, कभी नहीं मानने वाला हमको, क्लास में आने की भी छुट्टी नहीं देने वाला, उसको बोला तुम लिखो मैं सही करेगा, उसको बोलो भले तेरी इच्छा है तुम सेवा कर सकती है। तो हम जिस समय पर जा रहे थे, यहाँ से मधुबन से निकल रहे थे, हमारा तो सामान भी गाड़ी में चढ़ रहा था, मैं तो एकदम ये हो गई निराश, मैं बोला अभी कहाँ से आएगी चिट्ठी, वो तो देने वाला है नहीं हमको चिट्ठी, अभी ठीक है जाते देखते क्या होता है। मैं अभी जा रही हूं उस समय उसकी चिट्ठी आके पहुंची, मैं चिट्ठी सीधा चिट्ठी लेके भागी बाबा के पास कमरे में, मैं बोला बाबा देखो मेरे को परमिशन आ गई, मैं अभी नहीं जाऊंगी। बाबा ने कहा बच्चे हाल में चलो, बाबा आता है, वो जो मैं छोटा हाल है ना हिस्ट्री हाल, वहां मिलता था बाबा छुट्टी देता था, बाबा आता है वहां आके तुम्हारे से मिलेगा। आया, मैं बोला बाबा देखो, मैं खड़ी हो गई, मैं बोला बाबा देखो मेरे को परमिशन मिली, हमारे बाप ने लिख के भेजा तुम रह सकती है। बाबा ने कहा अभी बच्ची तुम बहुत छोटी है, मैं बोला अभी कैसी छोटी हो गई मैं मैं बोला बाबा आप भी क्या करते हैं, मैं पहले बड़ी थी आप रोज बोलते थे, अभी बोलते छोटी है, मैं छोटी हूं या बड़ी हूं मैं जाने वाली नहीं हूं फिर बाबा ने मेरे को जानकी दादी के पास वहां भेजा, जिसमें पूना में भेजा। तो बाबा मदद जरूर करता है पर हिम्मत अपने को रखनी पड़ती। अभी अगर मैं चिट्ठी लिखती नहीं थी तो मेरे को कोई परमिशन नहीं मिलने वाली थी, पर मैं तो ऐसा समझा पता नहीं देता है या नहीं देता है, 99% तो नहीं देता है ऐसा ही था, परंतु एक सेकंड में उसने छुट्टी दे दी। तो इसीलिए ईश्वर के अर्पण अपना जीवन करना, उसमें भी हिम्मत चाहिए, हिम्मत के बगैर थोड़ा ही होता, हर बात में हिम्मत चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे एक कदम तुम्हारा तो हजार कदम मेरा, पर एक कदम उठा के तो देख, एक तो कदम उठा के देख। इसीलिए कभी भी कोई भी बात होवे तो अपनी हिम्मत जो है उसको नहीं हारना, अर्थात दृढ़ संकल्प को नहीं छोड़ना। तो जब हम लोगों ने ये दृढ़ संकल्प किया है कि हमें बाप समान बनना ही है, हमें फरिश्ता बनना ही है, तो इस दृढ़ संकल्प को अगर सदैव याद रखते हैं तो बाबा हमारे को वो बनने के लिए सदैव मदद करता रहता है और हम अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। ओम शांति।